या तो वो चलता फिरता है या फिर बोलता है, भोजन करता है, कुछ उठाता रखता है या मलमूत्र विसर्जित करता है। तो इन्हीं पांच प्रवृत्तियों में साधु जो सावधानी बरतते हैं उसका नाम है समिति। तो समिति पांच कौन सी है, किसी को याद हो तो बता सकते हैं? ईर्ष्या समिति, भाषा नहीं, देखो भाषा समिति का ही नाम भाषा समिति है और उसमें भाषा की शुद्धि तो कम से कम उच्चारण की शुद्धि, भाषा समिति। तीसरी एषणा, एषणा नहीं, एषणा समिति। एषणा का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे शब्द जो हिंदी भाषा में आज प्रचलित है वो जैन शास्त्रों से आए हुए हैं। एषणा समिति का अर्थ क्या है? आहार की गवेषणा करते हैं जब साधु, तब 32 अंतरायों से रहित आहार करते हैं और 46 दोषों से दूर रह करके आहार करते हैं। ऐसे जो विधि होती है उसका नाम एषणा समिति है। और फिर आदान निक्षेपण समिति, आदान यानी रख लेना और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। तो उठाते रखते समय जीवों की रक्षा करते हैं, पिच्छिका से परिमार्जन आदि करते हैं, तो वो आदान निक्षेपण समिति है। और आखिरी जो है प्रतिष्ठापना समिति, अथवा इसका दूसरा नाम इसी का उत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग नहीं, उत्सर्ग समिति। ईर्ष्या भाषा ईष्णादान निक्षेप उत्सर्गाः समितयः। कौन से अध्याय का सूत्र है? 9वें अध्याय। कौन से ग्रंथ का है ये तो आप कोई बता सकते हैं, तत्वार सूत्र। समिति प्रवृत्ति रूप होती है और गुप्ति निवृत्ति रूप होती है। ये दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा, गुप्ति निवृत्ति रूप और समिति प्रवृत्ति रूप होती है। तो जिस साधु को निवृत्ति और प्रवृत्ति इसका विवेक है वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। और कुछ भी पढ़े लिखे नहीं, उनको अक्षर मात्र भी नहीं आता। शिवभूति महाराज को तो 6 अक्षर भी आते थे, लेकिन जो मुनि कोई भी बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानते, वो भी अगर इतना जानते हैं कि कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए और निवृत्ति कैसी होनी चाहिए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिवभूति महाराज को एक क्षण पहले 6 अक्षरों का ज्ञान था और एक क्षण के बाद लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान था। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में 6 अक्षरों का ज्ञान और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान। तो ये 8 आचार्य परमेष्टि से संबंधित गुण हो गए। फिर उपाध्याय परमेष्टि से संबंधित क्या बतलाया गया? 8 प्रकार की विनय होती है, शब्दाचार, अर्थाचार, ये तो आपको कई बार हमने बताया, महावीर अष्टक के शिविर में भी बताया था, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, शब्दों को सही पढ़ना, नहीं तो लिखा कुछ है और आप पढ़ कुछ और हैं। पहली बार जब तत्वार्थ सूत्र का हमने पाठ किया था तो फिर उसमें एक शब्द आता है वेदनायाश्च, उसको हमने वेदनी याश्च पढ़ दिया था। फिर बाद में पता चला कि दोनों में कितना फर्क है, वेदनीय का अर्थ क्या होता है और वेदना का अर्थ क्या होता है। वैसे और बहुत सारे शब्द आते हैं कि जिनके थोड़े से आप मात्रा और वो बदल दो तो फिर अर्थ बदल, बीड़ी और बड़ी, एक छोटी सी ई की मात्रा ही का तो फर्क है लेकिन उसमें अर्थ कितना बदल गया, एक में बीड़ी हो गई और दूसरे में बड़ी। अब बीड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग, बड़ी ई की मात्रा भी लगाते हैं। तो ऐसा होता है, मात्राओं का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, फिर चौथा है कालाचार, तीसरा उभयाचार है, चौथा कालाचार। कालाचार का अर्थ होता है समय का ध्यान रखकर स्वाध्याय करना, जब कभी स्वाध्याय नहीं करना, समय देख करके स्वाध्याय करना। स्वाध्याय की 4 बेलाएं होती है। फिर विनयाचार 5वां, कि कैसे विनय की जाती, शास्त्र को दोनों हाथों में उठाना चाहिए और जब शास्त्र को लाया जाता है तो खड़े होकर के हाथ जोड़ लेने चाहिए, फूक मार करके उसके पृष्ठ नहीं पलटने चाहिए। अथवा जैसे इस पश्चिम भारत में एक पद्धति है कि पेज पलटने के पहले मुंह में उंगली डालने की आदत है, प्राय बहुत लोगों को आदत रहती है, तो वो शास्त्रों के लिए वर्जित है। और वैसे भी आप अगर छोड़ दो तो फिर बहुत खुशी की बात है, जरूरत नहीं है उसकी। आप पानी के माध्यम से भी कर सकते हैं और कोई उपाय भी कर सकते हैं। अभी तक हमें तो जरूरत नहीं पड़ी इतने सालों में तो फिर हमें लगता है कि आप लोग भी काम चला सकते हैं। पेज खोलना है तो फिर ऐसे करके देखिए, ये पुस्तक है उसके ऊपर के भाग को पकड़ करके ऐसे खोल लीजिए। फूक मारने की या फिर मुंह में हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे अभिनय होती जिनवाणी की अशुद्ध होती। विनय आचार, फिर इसके बाद उपधान आचार। उपधान आचार का अर्थ क्या होता है? इसके दो प्रकार से अर्थ बतलाया। एक तो आप शास्त्र स्वाध्याय में असावधानी मत बरतो, नहीं तो कोई पंक्ति पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और फिर उस बीच आपका ध्यान कहीं और चला गया, मोबाइल चालू हो गया तो फिर हेलो रिसीव कर दिया उसको, फिर वहां हाँ अभी स्वाध्याय चल रहा है, हाँ चलो क्या बोला, तो ऐसे आगे की पंक्ति पढ़े और फिर बीच का सब छूट गया, तो ये नहीं चलता। स्वाध्याय में आप एकाग्र चित्त होकर, ये अभिनय भी हो रही है और उपधान आचार में भी भंग हो रहा है, सावधानी पूर्वक पूरा अध्ययन करिए। और इसका दूसरा नियम यह है उपधान आचार में कि स्वाध्याय जब तक पूर्ण न हो जाए किसी ग्रंथ का तब तक कुछ त्याग कर दीजिए, भोजन में से कोई वस्तु का त्याग कर दीजिए। और उसमें हम प्राय सुझाव देते हैं कि कोई ऐसी वस्तु का त्याग करो कि जिससे अपना स्वास्थ्य भी ना बिगड़े और त्याग करने पर अपने को लगे भी कि कुछ त्यागा है। नहीं तो कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद नहीं होती, तो जो चीज ना पसंद है उसका त्याग करने में कोई बड़ाई थोड़ी है। करेले का त्याग या दलिये का त्याग या और किसी चीज का त्याग कर दिया तो उससे क्या मतलब। तो इस तरह ये उपधान आचार है। फिर बहुमान आचार। बहुमान आचार का अर्थ कि स्वाध्याय में बहुत अधिक सम्मान का भाव होना चाहिए, ये उस समय विचार रखना चाहिए अपने मन में कि मेरे जीवन की यह धन्य घड़ी है जो मुझे जिनवाणी मिल रही है सुनने, इसका नाम है बहुमान आचार। और अंतिम है अनिन्नव आचार। जिस ग्रंथ की जो पंक्ति है और जिन आचार्य द्वारा प्रणीत है उनका सम्मान कभी मत छोड़िए। जैसे मान लो आप कोई पंक्ति का अर्थ बतला रहे हो किसी को, अब सामने वाला सोचेगा कि आप कितने होशियार हो, वाह वाह बोलने लग जाएगा, तो वाह वाही के चक्कर में आप उसका नाम छुपा लो, ये पाप है। क्योंकि आपने बात कहीं और से कही थी और वाह वाही किस पर से लूटी, कि आप उसके मालिक हो। जैसे किसी गुणभद्र आचार्य महाराज ने कोई श्लोक कहा है आत्मानुशासन, उसका अर्थ हम बतला दें आपको और फिर आप सब जगह जाकर के तारीफ करो कि महाराज का बहुत बढ़िया प्रवचन था, और हम ये न बताएं कि ये श्लोक कहाँ का था, तो फिर ये हमारे लिए दोष है। इसलिए ये अवश्य बताना चाहिए कि कौन सा श्लोक कहाँ का है, अथवा कम से कम ये बता सकते हैं कि ये श्लोक किसी ग्रंथ में आया है, ये हम जो बात बतला रहे हैं आपको वो हमारे मन की या हमारे चिंतन के द्वारा प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो किसी ग्रंथ के आलंबन से हम आपको बता रहे हैं। और नाम लो तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी नाम याद नहीं रहते, बहुत से लोगों को नाम याद नहीं रहते, इतना याद रहता है कि ये कहीं बात आई थी, ये हमने सुनी थी, इतना तो याद रहता है, लेकिन सुनी थी तो फिर आप ये मत बताओ कि ये बात मैं कह रहा हूं। एक बार हमने भी कहा था कहीं पर कि जो रामकथा के अंत में हमने कहा था नागपुर में कि यहाँ जो रामकथा हमारे मुख से आप श्रोताओं ने सुनी है, तो इस रामकथा के रचयिता हम नहीं है, ये तो जो बड़े बड़े तीर्थंकरों के मुख से और बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा चली आ रही है कथा, वो कथा हमारे माध्यम से आपके पास पहुंची है। शब्द हमने दिए हैं लेकिन कथा जो है वो पुरातन है, प्राचीन है। तो हमारा कार्य यहाँ पर कितना है, तो उस समय हमने एक दृष्टांत दिया था कि जितना कार्य ये साउंड बॉक्स का होता है ना, साउंड बॉक्स जानते हो, बस साउंड बॉक्स का काम क्या होता है, आवाज आपके कानों तक पहुंचाना। पर साउंड किसका होता है, जो माइक के सामने बैठता है उसका होता है। तो इसी प्रकार वो वाणी किसकी है जिसमें राम कथा आई है, वो हमारी नहीं है वाणी, हम तो सिर्फ साउंड बॉक्स का काम करके वो आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये अनिन्नवाचार कहलाता है। इसमें अपन अभिमानी नहीं बनेंगे अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो। तो इस तरह ये आठ आठ बतलाए हैं, साधुओं के आठ जो बतलाए थे वो तो योग के अंग है। ऐसी कितनी सारी बातें हैं। तो श्रुतिक ज्ञान और केवल ज्ञान में बड़ा फर्क नहीं है, फर्क केवल इतना है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुतिक ज्ञान परोक्ष है। इसीलिए परसों जो श्रुत पंचमी का पर्व है उस पर्व को अपन मनाने जा रहे हैं, उसका महत्व आपको समझना है। शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद में फिर श्रुतावतार जो कथा है वो आपको सुनाई जाएगी, और उसमें ये पर्व कब से चला है और इसको पर्व के रूप में क्यों मनाया जा रहा है इसकी चर्चा आपको स्पष्ट समझ में आएगी। बहुत मजेदार कथा है वो, उसमें अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आपको सुनने को कथा में। और वैसे आपने सुनी भी है कथा, कई बार कभी आपको सुनने मिली है, तो वो कथा बड़ी सुंदर कथा, श्रुतावतार कथा उसका नाम है। तो परसों के दिन श्रुत पंचमी के पर्व के उपलक्ष्य में सुनेंगे आप। तो अभी छेड़ाला में जो ज्ञान, समय ज्ञान का प्रकरण है, उसमें ज्ञान की उपासना, ज्ञान की आराधना कैसे की जाती है उसकी चर्चा चल रही थी। तो इसीलिए हमने ये ज्ञानाचार के आठ भेद आपको सुनाए। ज्ञान की आराधना के लिए सर्वप्रथम उपाध्याय परमेष्ठि के गुणों में ये शब्दाचार, शब्दों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध नहीं, शुद्ध उच्चारण, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या हुआ, श का स नहीं बोलना, ये सब बचपन में सीखने की चीजें रहती है, लेकिन फिर बाद में आगे चल करके जो जबान पर जम जाता है वैसा ही उच्चारण होने लग जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया जा सकता है, प्रयास करके उच्चारण को सुधारा जा सकता है। गुजराती लोग कई बार क्षमा, क्षमा के बदले समा या ऐसा कुछ बोलते हैं उच्चारण, ऐसा कुछ करते हैं वो, रक्षा बेन या दक्षा बेन ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं। तो क्ष, क्ष का जो उच्चारण है वो शुद्ध, ये सब उच्चारण संबंधी सारे जो नियम है, छंद पाठ जो है वो सब शब्दाचार में आते हैं। अर्थाचार में प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालना, ये कला आती है, और इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले क्या पढ़ना, व्याकरण, फिर साहित्य और फिर न्याय। इन तीन का जिसने अध्ययन कर लिया तो फिर वो जहां पर जैसा अर्थ आवश्यक है वैसा अर्थ निकालने में समर्थ होता है, अन्यथा जहां जो अर्थ नहीं है वैसा अर्थ निकल आता है, क्योंकि शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं। जैसे सैंधव शब्द है, न्याय ग्रंथों में ये भी बताया है, एक दृष्टांत दिया है, किसी राजा ने अपने सेनापति से कहा कि सैंधवम आने है, सैंधव लाओ। अब सैंधव शब्द के दो अर्थ थे, तो दो में से राजा ने अगर सेनापति को सैंधव लाओ बोला है तो फिर वहां पर सेनापति सिंध देश का घोड़ा ही लेकर के आएगा, और किसी ग्राहक ने अगर दुकानदार से कहा है सैंधव माने है, तो फिर वहां किराने की दुकान पर सैंधव शब्द का अर्थ बदल जाएगा, वहां उसका अर्थ सिंध देश का घोड़ा नहीं रहेगा, वहां उसका अर्थ होगा सेंधा नमक। अगर प्रसंग के अनुसार अर्थ न निकालो तो दुकानदार को दुकान बंद करनी पड़ेगी और सेनापति को जान गंवानी पड़ेगी। राजा ने सेनापति से कहा सेंधव आने और वो नमक लेकर के आ जाए पुड़िया में, तो फिर राजा क्या कहेगा कि तुम्हें बर्खास्त किया जाता है, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। अथवा अगर क्रोध आ जाए तो फिर उसकी जान भी खतरे में आ जाए सेनापति की। और अगर दुकानदार से कहो सेंधव आने हैं, और मान लो उसका लड़का बैठा हो दुकान पर और उसको ये पता हो कि सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा होता है, और फिर वो सोचता है कि पता नहीं क्यों आज ग्राहक घोड़ा की मांग कर रहा है, तो वो दुकान बंद करके घोड़ा लेने चला जाए कहीं कि भाई आप हमारे पुराने ग्राहक हो इसलिए हम आपकी बात, आपकी उसकी पूर्ति करेंगे, तो हम अभी लेकर के आते हैं घोड़ा, घोड़ा लेने चला जाए, तो फिर वो ग्राहक क्या कहेगा कि आप कष्ट मत करो हम बाजू वाली दुकान से ले लेंगे। तो इसलिए प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालना अर्थाचार है, और तीसरा है उभयाचार, उभयाचार का अर्थ होता है कि जब अच्छा अभ्यास हो जाता है स्वाध्याय का, तब शब्द और अर्थ दोनों साथ साथ में आने लग जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अगर कोई कविता पढ़ी जाए या फिर छेड़ाला को आप पढ़ो, तो फिर पढ़ते पढ़ते ही साथ में उसका अर्थ लगा लेते हैं। इसका नाम है उभयाचार। पाठ भी शुद्ध चलता जा रहा है और अर्थ भी अंदर ही अंदर आ रहा है चिंतन में, इसको उभयाचार कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पाठ चलता है लेकिन अर्थ थोड़ा भारी पड़ता है, अथवा अर्थ सरल होते हुए मान लो आप भोजन कर रहे हैं और छेड़ाला का पाठ कर रहे हैं, तो फिर उस समय आप ज्यादा चिंतन नहीं कर सकते, नहीं तो रोटी जलेगी या और कोई मुसीबत होगी। तो इसलिए उस समय केवल पाठ करते हुए आप वो कार्य करते हैं। उस मात्र पाठ करने को शब्दाचार और अर्थ निकालने को अर्थाचार, और दोनों साथ में करने को उभयाचार कहते हैं। फिर चौथा कालाचार है। कालाचार में क्या होता है कि कुछ काल सिद्धांत सूत्र जो होते हैं उनके लिए निषिद्ध है। जिन वाणी में बहुत प्रकार का वर्णन है, बहुत प्रकार के शास्त्र हैं, प्रथमानुयोग आदि, चार अनुयोग हैं, 12 अंग हैं, लेकिन इनमें जो सिद्धांत सूत्र वाला प्रकरण है उनका स्वाध्याय अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में निषिद्ध होता है। अष्टानिका पर्वों में भी आप सिद्धांत सूत्र का स्वाध्याय नहीं करेंगे। ऐसे जो काल संबंधी नियम होते हैं, अथवा किसी साधु की यदि संलेखना हुई हो, तो उस दिन भी सिद्धांत सूत्रों का स्वाध्याय वर्जित हो जाता है। अथवा देश के प्रमुख का यदि अवसान हो जाए तो उस दिन भी स्वाध्याय वर्जित होता है। तो ये कालाचार कहलाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सामायिक का काल जो है वो स्वाध्याय का काल नहीं। कालाचार का अर्थ क्या है कि स्वाध्याय के जो काल हैं चार, उन कालों में ही स्वाध्याय निषिद्ध हो जाए सिद्धांत सूत्रों का, उसका वर्णन है। तो स्वाध्याय के चार काल होते हैं। सवेरे जब सूर्योदय हो जाता है, सामायिक और अन्य जो क्रियाएं होती है प्रातःकालीन जब संपन्न हो जाती है, और जब स्वाध्याय करने बैठते हैं उस काल को पौर्वाणिक स्वाध्याय बेला कहते हैं। फिर दोपहर में मध्यान्ह काल के बाद की जो बेला आती है अपराह्न बेला, उसको अपराह्निक स्वाध्याय बेला बोलते हैं। पौर्वाणिक स्वाध्याय बेला एक, दूसरी अपराह्निक स्वाध्याय बेला। तीसरी दिन ढलने के पश्चात जब सामायिक अधिक संपन्न हो जाए तब तीसरी स्वाध्याय वेला आती है, उसका नाम है प्रादोषिक स्वाध्याय वेला। प्रदोषा कहते हैं रात्रि को, और प्रादोषिक वेला कहते हैं उस वेला को। और फिर आधी रात के बाद की जो वेला आती है उसका नाम अपर रात्रिक स्वाध्याय वेला है। अपर रात्रिक स्वाध्याय वेला, ऐसी चार वेलाएं होती। तो इन वेलाओं में भी कुछ समयों में स्वाध्याय का निषेध, उसको कालाचार में ग्रहण किया। विनयाचार में शास्त्र की जितनी विनय करते हैं अलग अलग प्रकार की, वो सब विनय है। फिर उपधान आचार में हमने वर्णन बतला दिया कि कोई एक वस्तु का त्याग किया जाता है। बहुमान आचार में बड़े सम्मान के साथ स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय के समय किसी प्रकार से अपने अंदर अवहेलना या अनादर का भाव नहीं आने दिया जाता। और अंतिम जो है अनिन्नव आचार, जिस ग्रंथ की जो पंक्ति है या जो ग्रंथ करता है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनका नाम प्रकट करना, उनके नाम को न छुपाना, अनिन्नव आचार है। इस तरह श्रुति ज्ञान की आराधना का वर्णन आज अपन ने किया है। इसके आगे अवधि और मनः परे ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष ज्ञान है, द्रव्य और क्षेत्र की सीमा में रूपी पदार्थ को जानने वाले हैं। और केवल ज्ञान जो है वो तो अपार महिमा से मंडित, उसका अपन कल और विस्तार सुनेंगे। अब यहाँ तक अपन ने इसको दोहराया था कि ज्ञान की आराधना के लिए ज्ञान के भेद प्रभेदों का भी अपने को ज्ञान होना चाहिए। और भेद उसके दो बतलाए थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो परोक्ष में दो भेद थे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। जो किसी भी पदार्थ को इंद्रिय और मन से अपन सर्वप्रथम जानते हैं, उसके बारे में विशेष चिंतन आदि न करते हुए, वो मति ज्ञान होता है।
इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान, और फिर उसके बारे में जब विशेष विचार करते हैं या अर्थ से अर्थांतर तक चले जाते हैं, जैसे सांप को देखा तो सांप है ऐसा जाना, ये मति ज्ञान है। काट न ले, बहुत जहरीले होते हैं सांप और फिर काटने पर बहुत प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है। दो प्रकार के जहर होते हैं, एक जहर जब चढ़ता है तो खून जम जाता है, दूसरे प्रकार का जहर चढ़ता है तो फिर खून जमना ही बंद हो जाता है। ये सब जो आपने चिंतन कर लिया ये श्रुतक ज्ञान है। विषय क्या चल रहा है? सांप। तो सांप का जो प्रथम ज्ञान है मति ज्ञान, और फिर उससे अर्थांतर का जो ज्ञान है, सांप को लेकर के जितना भी और विशेष ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है? श्रुतक ज्ञान। पर मति और श्रुत दोनों परोक्ष हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन से इनकी उत्पत्ति होती है। फिर अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ये दोनों प्रत्यक्ष तो हैं, क्योंकि जीव स्वच्छा जाने, जीव स्पष्ट जानता है अवधि और मन परे ज्ञान से, लेकिन देश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष, देश यानी अपूर्ण। अपूर्ण प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लेकर के जानते हैं। द्रव्य की भी सीमा और क्षेत्र की भी सीमा इन दोनों में होती है, इसलिए ये देश प्रत्यक्ष। अब अवधि ज्ञान के और भेद तो इसमें विस्तार के साथ नहीं दिए हुए, वैसे अवधि ज्ञान के तीन भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान चारों गतियों में होता है, परमावधि ज्ञान केवल मोक्षगामी मुनियों को होता है, उसमें कुछ न्यूनाधिकता हो सकती है, और सर्वावधि ज्ञान भी मोक्षगामी मुनियों को ही होता है, लेकिन वो अवधि ज्ञान की पराकाष्ठा है। सबसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो है सर्वावधि है। ऐसे अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। फिर मन परे ज्ञान है, तो मन परे ज्ञान के दो भेद, तत्वार्थ सूत्र के स्वाध्याय में सारी बातें आ जाती निकल कर। तो मन परे ज्ञान के दो भेद जो है वो कौन से हैं? ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति के साथ मोक्ष का नियम नहीं है, लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञान जिनको होता है उनको अवश्य उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऋजुमति का विषय, विशुद्धि, सीमा, ये सब विपुलमति की तुलना में बहुत कम होते हैं, लेकिन ऋजुमति ज्ञान भी इतना महान होता है, मुनियों को तो होता ही है, कि उस ज्ञान में सर्वावधि ज्ञान द्वारा जाना हुआ जो विषय है उसके अनंतवे भाग का भी ज्ञान हो सकता है ऋजुमति में। फिर इससे आप कल्पना करो कि विपुलमति फिर कितना विशाल ज्ञान होगा। जैसे ऋजुमति है वो तीन से लेकर नौ भवों तक जान लेता है, और विपुलमति जो है वो नौ से लेकर असंख्यात भवों तक जान लेता है। किस जीव ने असंख्यात भवों पहले मनुष्य लोक में अभी विद्यमान कौन से जीव ने असंख्यात भव पहले सैनी पर्याय में, मन सहित पर्याय में क्या विचार किया था मन में? मतलब उसके ये भी निकाल सकते हैं वो कि 10 वर्ष की उम्र थी और 10 वर्ष 7 महीने 15 दिन और इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड पर उन्होंने अपने मन में असंख्यात भव पहले क्या विचार किया था, वो विपुलमति ज्ञानी मुनि जान सकते हैं। लगाने की उनको इच्छा कम होती है, कभी बहुत जरूरी कोई बात हो, किसी को जानकारी चाहिए हो, बोले कि मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आते हैं, मैं लाख प्रयास, बोले कि तुम 4 भावों पहले से ऐसे ही भाव करते आ रहे हो, बोले शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फिर वो बता देते हैं अपने भावांतर का ज्ञान। मुनियों को पुराणों में आप देखोगे तो प्राय रहता है, तो वो बतला देंगे मन परे ज्ञानी। अवधि ज्ञानी मुनि है वो ये बतला देंगे कि तुम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे भटक कर आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में ये बातें कब से चल रही है ये मन परे ज्ञानी मुनि बताएंगे, क्योंकि मन परे ज्ञान का विषय जो क्या है, मन में क्या है आपके, उसको जानना। अब मन में क्या है वो भी अगर आप धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का मन में ध्यान कर रहे हैं तो आकाश अमूर्त है, तो मन में अगर कोई अमूर्त का ध्यान चल रहा है अरूपी का, तो फिर उसको अन्य जो मुनि का मन परे ज्ञान है वो ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जो मूर्त है, रूपी है, उसका ग्रहण कर लेते हैं। अगर किसी जीव का चिंतन कर रहे हैं, सिद्ध भगवान का चिंतन करेंगे तो नहीं आएंगे मना परे ज्ञान में। और अगर कोई अरहंत भगवान का चिंतन करेंगे तो अरहंत भगवान के पास शरीर होने के कारण स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सब विद्यमान है और कर्म परमाणु भी है उनके पास, तो उसका चिंतन करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उनके मन को वो ग्रहण कर सकते हैं मन परे ज्ञानी मुनि। तो विपुलमति अपार महिमा से मंडित है, बहुत अद्भुत ज्ञान है। सर्वार्थ सिद्धि में जब उसका वर्णन किया है मन परे ज्ञान का, तो उसमें समझ में आता है कि कितनी मुश्किल से होता है मन परे ज्ञान, बहुत दुर्लभ। अब इसके आगे केवल ज्ञान को अपन दोहरा लेते हैं। तीसरे, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अब केवल ज्ञान की बात चलती है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता। अब सब द्रव्यों का अगर अपन परिमाण निकाले तो तीन द्रव्य तो गिनती में एक एक है, आकाश एक है, धर्म एक है और अधर्म द्रव्य भी एक है। अब फिर काल द्रव्य जो है वो असंख्यात है, लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, प्रदेश का अर्थ क्या है, परमाणु जितने स्थान को घेर ले आकाश के उसको प्रदेश कहते हैं, सबसे छोटा भाग आकाश का, तो उतने कालाणु पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे किसी बॉक्स में आप बहुत सारे मोती भर के रख दो तो पूरे बॉक्स में वो मोती अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, एक मोती दूसरे मोती के स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार लोकाकाश में ये कालाणु आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, लेकिन एक कालाणु दूसरे कालाणु को प्रभावित नहीं करता, वहां जाकर के उसका स्पर्श नहीं होता, सब पृथक पृथक रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में। काल द्रव्य असंख्यात हो गए, फिर इसके बाद बचे कौन? देखो तीन द्रव्य तो एक एक हो गए, काल असंख्यात हो गए, असंख्यात भी कितने असंख्यात, लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने, क्योंकि आकाश के तो अनंत प्रदेश हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। फिर अब जीव द्रव्य को ले लो, जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, और पुद्गल जो है वो जीव से अनंत गुने है। इसका हिसाब अपन कैसे लगाएं कि अपन अभी इस समय अपन जीव हैं, यहाँ विराजमान है, बैठे हुए हैं, और अपने साथ जो पुद्गल परमाणु जुड़े हुए हैं अपने आत्म प्रदेश से, कर्म रूप में कुछ पुद्गल परमाणु है और शरीर रूप नौकर्म में भी पुद्गल परमाणु, ये दोनों पुद्गल द्रव्य हैं, ठीक है ना, द्रव्य कर्म और नौकर्म, ये कौन से द्रव्य होते हैं, पुद्गल द्रव्य, छह द्रव्यों में से कौन से द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य। और भावकर्म, भावकर्म जीव की ही पर्याय है, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य में नहीं गिने जाएंगे भावकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म बताए थे ना, नौकर्म, द्रव्य कर्म और भावकर्म, तो इनमें से नौकर्म और द्रव्य कर्म नियम से पुद्गल द्रव्य ही है, और भावकर्म जो है वो जीव में जो भाव होता है उसका नाम है। अब अपन विचार करो कि अपने साथ कितने पुद्गल परमाणु जुड़े हैं, तो अकेले शरीर के परमाणुओं को अगर गिनेंगे तो अनंत है, प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राक तेजसात। फिर ये औदारिक शरीर की बात हुई, अगर वैकरिक शरीर हो तो इससे असंख्यात गुणे अधिक परमाणु उसमें पाए जाते हैं, और अगर मुनि का जो मस्तक से निकलने वाला एक आहारक शरीर होता है, रिद्धिधारी मुनि को निकलता है, वो अगर आहारक शरीर हुआ तो फिर वैकृत शरीर में जितने परमाणु है उससे भी असंख्यात गुने परमाणु आहारक शरीर में। और फिर अपने अंदर ये जो औदारिक शरीर है ये तो ठीक है अपने पास, बाहर से दिखाई देता है, एक तेजस शरीर और होता है। वो तेजस शरीर जो होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं? तो आहारक शरीर में जितने परमाणु थे उससे अनंत गुणे परमाणु तेजस शरीर में होते हैं, अनंत गुणे परे। और तेजस शरीर में जितने परमाणु होते हैं उससे अनंत गुणे परमाणु कार्मण शरीर में, कर्मों का जो अपना पिंड है ना, ज्ञानावरण आदि आठों कर्म अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आठों कर्मों के जो परमाणु हैं वो तेजस शरीर के परमाणुओं से भी अनंत गुणे हैं। अब आप विचार करिए कि एक जीव के साथ पुद्गल द्रव्य के कितने परमाणु हैं,